বিষয়া চাড়িয়া খবে সুদা হবে মানা, কবে হামাহে রাব শ্রী বৃন্দাবনা। রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝাবো সে যুগল প্রীতি। হইবে আকুতি কবে হাম বুঝাবো সে যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে রাহু মোরা আশা, প্রার্থনা করো এ সদা নরতম দাস। রূপ রঘুনাথ পদে রাহু মোরা আশা, প্রার্থনা করো এ সদা নরতম দাস। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলক শরীরা, হরি হরি বলিতে নয়নে ভবে নীরা। বিষয়া ছাড়িয়া খবে সুদা হবে মানা, কবে হামাবো সে শ্রী বৃন্দাবনা। বিষয়া ছাড়িয়া খবে সুদা হবে মানা, কবে হামাহে রাব শ্রী বৃন্দাবনা। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते নয়নে ভবে নীরা। আর খবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে। কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে। নিতাই নিতাই বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হামাহের বসে শ্রী বৃন্দাব। পদে হইবে আকুতি, কবে হাম কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হামা বুঝব সে যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে রহো মোরে আশা, রূপ রঘুনাথ পদে রাহো মোরা আশা, প্রার্থনা করো এ সদা নরোত্তম দাস। প্রার্থনা করো এ সদা নরোত্তম দাস। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে ভবে নীরা গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে ভবে নীরা. When will that opportune moment come to us when there will be shivering of the body as soon as we chant Lord Gauranga's holy name? While chanting Hare Krishna, when will there be tears in the eyes? When will I obtain the mercy of Lord Nityananda? When by his mercy will the desire for material enjoyment become very insignificant? When by his mercy will the desire for material enjoyment become very insignificant? When the mind is completely purified, being freed from material anxieties and desires, then I shall be able to understand Vrindavan and the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. When shall I be very much eager to study the books left by six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Sanat Raghunath Das Goswami? By their instruction, I shall be able to properly understand the loving affairs of Radha and Krishna. My only aspiration is to attain the lotus feet of the six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Narottam Das constantly prays to attain their lotus feet. Hare Krishna. Such a beautiful song. Narottam Das Thakur prays very sincerely. So everyone wants to go to Vrindavan. But what is the meaning of going to Vrindavan actually? Not to eat in MVT, not to eat in Govinda's, not to eat in Bharati Akshay Patra restaurant, not to have very nice luxurious apartment to stay, luxurious bus to travel. Vrindavan means one gives up Rajoguna and Tamoguna, and in pure sattva one goes to Vrindavan. Giving up all desires of comfort and enjoyment. We do not go to Vrindavan to enjoy Vrindavan. We go to Vrindavan to serve Vrindavan. We can actually enter Vrindavan only in the mood of service. One may think, I went to Vrindavan, I had such a good time there. I had such fun there. Went to Hindi. Jai Ho Shri Radhe Shyam. Sab log Vrindavan jana chahte hain. Lekin seva bhav ke bagar Vrindavan mein pravesh nahi mil sakta hai. Vrindavan gaye, kesar lassi piya, ghee ki tikki khai, Banke Bihari ke paas. Aur kahin dosa khaya, wahan acha milta hai. Ye Vrindavan bas nahi hai. Vrindavan bas yani keval seva. सेवा के लिए आतुरता, सेवा के लिए तड़पना, तब वृंदावन प्रवेश होता है. तो वृंदावन बहुत दूर है हमारे से, बहुत दूर है. तो हम सबको प्रयास करना चाहिए. ये जो मूड है नरोत्तम दास ठाकुर जी का, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है. विषया छाड़िया खोबे शुद्ध हवे माना। ये और एक क्वालिफिकेशन है वृंदावन जाने का। जब तक विषयों की वासना मन में है तब तक पूरी तरह से वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है। होगा थोड़ा बहुत, जितनी सिंसियरिटी होगी थोड़ा बहुत स्पर्श होगा, लेकिन जब तक विषयों की वासना मन में है तब तक श्री वृंदावन धाम में पूरा प्रवेश नहीं मिल सकता है। क्योंकि वृंदावन धाम बहुत गहरा है, बहुत बहुत ही गहरा है। उसमें कुंज है, उसमें निकुंज है, उसमें निवृत्त निकुंज है, उसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ऐसे ऐसे स्टेजेस हैं कि लास्ट स्टेज में कोई नहीं है, केवल राधा और कृष्ण हैं एकांत में। उसके पहले वाले में राधा कृष्ण और अष्ट सखी हैं, उसके पहले वाले में राधा कृष्ण और सारे सखियाँ हैं। ऐसे अलग अलग डेप्थ है वहाँ पर। तो किधर है वो, हम लोग कहाँ हैं, वो किधर है। फिर भी मन में प्रामाणिक इच्छा रखनी चाहिए। कभी हमा भुजा बोसो घेरा बोसे श्री वृंदावन, कभी हमा घेरा बो श्री वृंदावन। कब दर्शन होंगे वृंदावन धाम के, ऐसे नहीं कि हम बस से जाएंगे, कार से जाएंगे और पहुंच जाएंगे। कब वो दर्शन होंगे जो वास्तविक दर्शन हैं, वो नहीं बहुत गाड़ियां हैं, टै 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 हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया है, संडे का दिन है, सब रोड ट्रैफिक जाम है, बहुत लोग ही लोग हैं सब जगह पर, परिक्रमा दे रहे हैं, वो भी एक वृंदावन है। लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है वो ये सबके परे हैं, जिसके लिए हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। अभी वृंदावन का कोई इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि सब जगह आश्रम, सब जगह डोसा, सब जगह इडली, चाइनीज, चाउमीन, ये सब हो गया है। वैसे ही हुआ था बद्रीनाथ केदारनाथ का भी, इसलिए वहाँ पर इतना बड़ा निसर्ग का आतंक हो गया। क्योंकि जो चीज़, जो स्थान तपस्या के लिए ही निश्चित किया गया है, वहाँ पर जब भोग आ जाता है तो फिर प्रकृति का प्रकोप हो जाता है। वहाँ पर भी आलू पराठे, पनीर की सब्जियाँ और क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं, और लोग हनीमून मनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, लोग मजा करने के लिए वहाँ जाते हैं, चलो तो बर्फ़ देख के आएंगे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ ये जगह जो है वो तपस्या की जगह है, लोग जाते ही वहाँ पर तपस्या करने के लिए। पहले किधर हेलीकॉप्टर थे, किधर बस थे, लोग चल के जाते थे, उनको ऐसे विदा करते थे कि जैसे भगवान के धाम में जा रहे, वापस नहीं आएंगे, और बहुत लोग वापस आते भी नहीं थे। तो उसी जगह को, जो इतनी पवित्र जगह है, जो लोगों को विदा ही ऐसे करते थे कि जा रहे हैं आप, अभी वापस नहीं आएंगे, वो जगह को ऐसे भोग की जगह बना दिया, तो फिर कभी ना कभी तो प्रकृति प्रकोप करेगी ना। वास्तविक कारण इसका, आध्यात्मिक कारण ये है। भौतिक कारण है कि जहाँ पर रास्ता नहीं बनाना चाहिए था वहाँ रास्ता बनाया, जहाँ पर भराव नहीं करना था वहाँ भराव किया, वो तो भौतिक कारण हो गए उसके। लेकिन आध्यात्मिक कारण ये है कि जो तपस्या की भूमि है, त्याग की भूमि है, उस भूमि को लोगों ने भोग की भूमि बनाने का प्रयास किया, निसर्ग का अपमान किया, साथ में प्रकृति का अपमान किया, जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ किया। तो इसलिए हमें, इसलिए हम यात्रा में कैसे करते हैं, यात्रा में जिस जगह जा रहे हैं ना, उस स्थान का जो भाव है उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। उस हर एक स्थान का एक भाव होता है अपना, और वो स्थान का वो भाव जो है उसकी विशेषता है, और हर पवित्र स्थान का भाव अलग है। सबका स्थायी भाव सेवा भाव है, वो निश्चित है, लेकिन स्थायी भाव के ऊपर भी कुछ विशेष भाव है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब तक रूप और रघुनाथ गोस्वामियों की कृपा नहीं होगी तब तक ये समझ में कैसे आएगा कि राधा कृष्ण कौन है, उनका क्या रिलेशनशिप है। जब इनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ दिमाग में प्रकाशन नहीं पड़ेगा, इनकी कृपा करने के होने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, उनकी धाम की सेवा, धामवासियों की सेवा करनी होगी, तो भाव को ग्रहण करना होगा, तब जाके जब प्रसन्न हो जाएंगे भगवान तो वो प्रकट करेंगे कि ये इनका रहस्य है रिश्ते का, वो प्रकट होने लगेगा। इसलिए हो सकता है हमारे पास समय कम है, हम कार से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज़ से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ों को सुविधा के लिए हम कुछ सुविधाएं ले लेंगे, लेकिन ये सब करते हुए भी जो अंदर का भाव है वो सेवा भाव होना चाहिए और भोग का भाव नहीं होना चाहिए। ज़रूरतों को स्वीकार करना ये अलग चीज़ है और हर लोगों की व्यक्ति की ज़रूरत अलग हो सकती है, लेकिन ज़रूरत के ऊपर भोग भाव निर्माण करना और उस जगह का एंजॉय करना, इसको त्याग देना चाहिए। तब जाकर थोड़ा बहुत ठाकुर जी प्रसन्न हो सकते हैं। अंदर के भाव में भोग भावना नहीं आनी चाहिए, सेवा भावना आनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम भी बहुत तीव्र धाम है। वहाँ पर अगर कोई गुरुजी के छत्र छाए के बगैर जाएगा ना तो विध्वंस करके लौटेगा वो। कैसे, बहुत लोग वृंदावन में आज भी रहते हैं ऐसे, केवल एंजॉय करते हो। कभी यहाँ गाड़ी जा रही है तो बैठ गए वहाँ पर, फ्री में यात्रा हो रही है, कभी प्रसाद मिल रहा है फ्री में तो वहाँ गए, कभी ये कथा हो रही है, कभी वो कथा हो रही है, और कभी उनको बोलो आपकी कुछ ये थोड़ी सेवा है, हॉस्पिस में कोई दम तोड़ रहा है उसकी सेवा में आ जाओ। नहीं, प्रभु नंदे गाँव की यात्रा है ना, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ पर कथा हो रही है वहाँ जाना है, अब इनकी कथा हो रही है वहाँ जाना है। ये सब कथा और ये सब दर्शन करते क्यों हैं हम, ये समझने के लिए कि हमको अल्टीमेटली सेवा भाव, सेवा मिलने वाली है, मिलनी चाहिए, इसलिए तो कर रहे हैं हम। लेकिन सेवा को छोड़कर जो भोग लेने का भाव है, दे आर एंजॉइंग। दारू पीने से अच्छा है वो डेफिनेटली, लेकिन एसेंस को भूल रहे हैं उसको। तो धामवास का मतलब सेवा, धामवास का मतलब धाम का आनंद तो होता ही है, झूला जाता तो झूला देखेंगे हम लोग, हाँ उत्सव होगा तो उसका भी आनंद लेंगे, आनंद तो धाम में बाय प्रोडक्ट है, वो आते रहते वो, बट उस आनंद के लिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उस सेवा करने के लिए। उस सेवा करने को आनंद मिलता ही है, उसमें आनंद के बिना सेवा, सेवा का मतलब क्या है, सेवा इज द स्टोर हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सेवा आनंद का स्रोत है, सेवा से ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। तो वैसे कैसे बोलते हैं आपको सेवा करेगा आनंद नहीं मिलेगा, सेवा आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन सेवा का भाव जो पकड़ेगा उसको मिलेगा, नहीं तो फिर आपको कहीं भंडारा मिलेगा, कहीं फीस्ट चल रही है, कहीं की आज किसी के नाम का भंडारा है, कभी ये फेस्टिवल का भंडारा है, कभी 51 भोग का भंडारा है, कभी उधर कुछ है फेस्टिवल है, नंदगांव में है, वृंदाकुंड में है, बरसाने में है, आज 56 भोग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उससे आत्मा की शुद्धि होगी ही, इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन 1000 रुपया जहाँ मिलना चाहिए वहाँ 10-20 रुपये मिल ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 10-20 में आप संतुष्ट है तो हरि बोल क्या कहें अभी 1000 मिलने का चांस है वहाँ पर, 10-20 में आप संतुष्ट हो गए तो फिर अल्प संतुष्ट कह सकते हैं, लेकिन उसके पोटेंशियल 1000 रुपये का है। और भगवान की भक्ति में इतना खजाना है, वो 10-20 रुपये में संतुष्ट क्यों होना चाहिए, अपने पूरा ही जो उसका सार है वो ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, और वो केवल सेवा भाव से हो सकता है। हो सकता है अभी तक विषयों की वासना नहीं छूट गई होगी, हो सकता है अभी भी दिव्य भाव नहीं उत्पन्न हो गया, लेकिन कम से कम भोग लेने का भाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो कर सकते ना। वृंदावन जाके अभी टिक्की कभी खाना है, लस्सी कभी पीना है, वो कभी करना है, एटलीस्ट कम से कम यू कैन गिव अप दैट ना, जो मिल रहा है वो खाओ और भगवान का भजन करो, भक्तों का संग करो, उनकी सेवा करने का प्रयास करो। लेकिन अगर सेवा मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं है अभी, सेवा अगर मिल जाती है यात्रा कैंसिल, ये कैंसिल वो कैंसिल सब कैंसिल करना चाहिए, सेवा इज द टॉप मोस्ट, सारे साधना का फल है वो सेवा, वो सेवा बहुत भाग्यवान लोगों को मिलती है, हर व्यक्ति को सेवा नहीं मिलती। और ये सेवा भाव भगवान को इतना पसंद है कि वो सेवा भाव वाले को वो खुद अपने आप को अर्पण कर देते हैं, ऐसे भगवान है हमारे, तो सेवा करता है उसके बाद दौड़ के जाते हैं, बाकी लोग उनके उनको दौड़ के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहे हैं, और सेवा वाले के पास भगवान दौड़ के खुद देखने को आते हैं उसको। पंडरपुर की एकादशी आने वाले अभी, वहाँ का सार क्या है? वहाँ का सार यही है, मुझे देखने का प्रयास मत करो, सेवा ऐसी करो कि मैं आपको देखने आऊँगा। ये पूरे पंढरपुर का सार यही है। भगवान दौड़ के आए पुंडलिक को मिलने के लिए, और पुंडलिक अपने भक्त माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। उन्होंने कहा रुको आप, मेरे सेवा बाकी है अभी। भगवान रुक गए, सेवा पूरा किया और फिर मुड़े। तो भगवान ने कहा मैं आपके इतना प्रसन्न हूँ आपके ऊपर, क्या चाहते हो आप बताओ। तो भगवान पुंडलिक कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं आपको मांगना चाहिए, मैं देने के लिए आया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि पुंडलिक कहते हैं कि आप अभी ऐसे ही खड़े रहो। क्यों? क्योंकि आप इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पतित जीव के लिए आप कमर पे हाथ रख के इतनी देर खड़े रहे, इतना सुंदर दर्शन देने के लिए खुद आए आप। तो ये आपका जो भाव है भक्त वत्सलता, ये सब दुनिया को पता होना चाहिए, इसलिए आप इसी रूप में खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो। तो ऐसे ही खड़े रह गए वो, 28 युग हो गए अभी भी खड़े हैं। कि भक्त पर वो कितना, भक्त के प्रति भगवान कितना भाव रखते हैं इसका ये प्रमाण है। भक्त के प्रति कितना भक्त को चाहते हैं, वो जो भाव था उनका भक्त के प्रति, वो विश्व को पता होना चाहिए। इस भाव से पुंडलिक ने कहा कि आप खड़े रहो, ऐसा नहीं कहा कि मेरे आपके लिए आज्ञा आएगा आप खड़े रहो, आपने पूछा ना ये मेरे अभी ये वरदान चाहिए, ऐसा नहीं। उनका नम्र भाव था कि आप इतने दयालु हो, अगर आप अगर मुझे दर्शन दे के चले गए तो आपका ये जो दयालु करुणामय स्वरूप है लोगों को सब पता चलेगा कि आप कितने करुणामयी हो, इसलिए आप रहो, ताकि आपको देखकर बार बार लगातार अनंत बार लोगों को याद आती रहे कि आप कितने करुणा वाले हो, कितने करुणामय हो। वैसे सनातन गोस्वामी थे, महाप्रभु चैतन्य का क्या भाव था उनके अंदर, वो उनको रोग हुआ था, ऐसा रोग हुआ था कि शरीर में इतने फोड़े हो गए थे, इतना पीप था उसके अंदर। तो महाप्रभु जब जाके भाग के उनको गले मिलते थे, बोलते महा नहीं महाप्रभु जी नहीं मत करना ऐसे, आप इतना मेरा शरीर गंदा है, इतनी पीप निकल रही, इतनी बदबू आ रही है उसके अंदर, इतना रोग हो गया है। बोलते नहीं मैं पवित्र होने के लिए, मेरे पवित्रता के लिए आपको आलिंगन दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्योरीफाई माई सेल्फ, या पीपी पे बात मत करना। तो उन्होंने आत्महत्या करना चाहा, ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, बोले ये अभी ऐसे जब चलता रहेगा तो महाप्रभु जी का शरीर सब पीप से गंदा हो रहा है। तो महाप्रभु ने बोला अरे तुमको आत्महत्या करने का अधिकार कैसे आ गया, तुमने तो तुम्हारा शरीर मुझे अर्पण किया ना संन्यास के समय, तो वॉट राइट डू यू हैव। तो फिर समझ गया कि अभी आत्महत्या करने का भी चांस नहीं, बोले तो नीलाचल छोड़ के जाऊंगा, अभी मैं दूर चला जाऊंगा यहाँ से। उस दिन जब वो दूर चला जाने का प्लान कर रहे थे, उस दिन जाके गले लगाया तो सारा रोग नष्ट हो गया। इतना भाव रखते हैं भगवान अपने भक्त पर, उसका संग छोड़ना नहीं चाहते। इतने दिन तक तो गले लगा लगा कर वो परेशान कर रहे थे उनको, लेकिन जब देखा कि जा रहा है अभी छोड़ के, तो फिर रोग ठीक करके रोक लिया उसको। किसी भी कीमत पर मुझे उसका संग नहीं छोड़ना है, ऐसे भगवान सोच रहे हैं भक्त के बारे में। कितना भाव रखते हैं अपने भक्त के अंदर, सोचो आप। तो क्यों भाव रखते हैं? क्योंकि वो सेवा भावी है भक्त लोग, उनको सेवा के ऊपर और कुछ नहीं चाहिए, सेवा के ऊपर वो और कुछ चाहते नहीं हैं। ऐसे इसीलिए गोपियों को भगवान ने कहा कि न पा रहे हम, मैं आपके लिए कुछ नहीं दे सकता, आपका प्रेम और सेवा भाव इतना श्रेष्ठ है कि उसके बदले में मैं आपको क्या दे सकूं, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको उसके बराबर का कुछ दे सकूं, इसलिए आपको फिर सेवा में ही संतुष्ट रहो, बी हैप्पी इन योर सर्विस ओनली। मेरे पास नहीं है वो चीज़ जो आपकी सेवा के बराबर जो आपको मैं दे सकूँ उपहार के रूप में। तो ये पंढरपुर के अंदर भी यही भाव है, ये जब भक्त लोग सेवा को प्रधान मानते हैं, क्योंकि सेवा ये सारी साधना का निचोड़ है, अल्टीमेट पर्पज है। और गोलोक में जाकर क्या करना है, वहाँ जाकर तो आनंद लेना नहीं है, आनंद आते रहेगा, लेकिन सेवा करनी है। सारे रसों का सार जो है वो सेवा है, चाहे वो साख्य रस हो, माधुर्य रस हो, माधुर्य रस हो, वात्सल्य रस हो, साख्य रस हो, शांत रस हो, कुछ भी रस हो, सबका साई भाव सेवा है। और सेवा का टाइप फिर बदलते जाता है बस, लेकिन सेवा तो सबका साई भाव है। माता भी सेवा कर रही है, गोपियाँ भी सेवा कर रही है, सखा लोग भी सेवा कर रहे हैं, मोर भी सेवा कर रहे हैं, वृंदावन धाम भी सेवा कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जितना हृदय अधिक शुद्ध होगा उतना अधिक सेवा भाव बढ़ेगा, उतने सेवा भाव और परिपक्व हो जाएगा। और जब सेवा भाव परिपक्व हो जाएगा तो फिर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर वृंदावन दिखेगा आपको। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जहाँ पर हो वहाँ पर भी वृंदावन का भाव आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि वृंदावन एक जगह है ज्योग्राफिकली, हाँ भौगोलिक दृष्टि से जगह है वो, यहाँ से 150 किलोमीटर है, सब कुछ सही है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, सब कुछ है, लेकिन उसके परे जाकर वृंदावन एक भाव की स्थिति है, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जहाँ भी आप दुनिया में रहो वहाँ पर आप इस भाव का अनुभव कर सकते हो, और उस भाव में रहते हुए उस भाव को अपनाते हुए भाव का अनुभव करते हुए आप जहाँ पर भी रहो वहाँ पर वृंदावन का अनुभव कर सकते हो। जैसे भगवान है, भगवान कैसे है, हाँ वो है धाम में निवास करते हैं, लेकिन साथ साथ में कण कण में भी है ना, वो हर जगह में भी है कि नहीं, वो दिखते क्यों नहीं हो, हमारा भाव नहीं ना हो, जब भाव होगा तो सब जगह वही दिखेंगे। जैसे गोपियों को सब जगह वही दिखाई पड़ रहे थे, पाती पाती पे श्याम ओ सखी, पाती पाती पे श्याम, मतलब हर पत्ते में, हर शाखा में, जमुना किनारे में, इधर उधर हर जगह पर, सब जगह शाम ही दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो अगर दिल्ली आएंगे समझो तो भी वृंदावन ही है उनके लिए, क्योंकि उधर भी उनको सब जगह शाम ही दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका गई तो भी उनको वृंदावन ही है, वो सब जगह वो शाम ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये असली वृंदावन है, हृदय का भाव जो है वो सबसे वास्तविक वृंदावन है। जब वो हम लोग अपनाएंगे, उसको पकड़ लेंगे उस भाव को, तो जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वही वृंदावन है, जहाँ पर हर जगह पर शाम की याद आती है वही वृंदावन है, जहाँ पर शाम की सेवा होती है वही वृंदावन है। वृंदावन असल में क्या है, जहाँ भक्त लोग प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, और भक्त लोग एक दूसरे से उस प्रकार का संबंध रखते हैं कि ये कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, सर ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये नहीं बोलते। सबको जब हम कृष्ण भक्त के रूप में देखते हैं, वैसे संबंध रखते हैं, और सब मिलकर जहाँ पर प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भाई वृंदावन प्रकट हो जाता है। चाहे वो दिल्ली हो, बम्बई हो, या गटर हो, या रशिया हो, कुछ भी हो, जहाँ पर ये भाव प्रकट होता है वही वृंदावन है। तो उस भाव की बात यहाँ पर हो रही है, हाँ विषया छाड़िया को भी शुद्ध है वही मन, तब जाकर वृंदावन का दर्शन हुआ। हरे कृष्णा। मुझे वे गीत गाते हुए नित्यानंद के धाम की भी याद आ रही थी, एक चक्र धाम की, इतना सुंदर प्रदेश है वो, इतना सुंदर जगह है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। बहुत साल पहले ज्योतिष लोग बैठ के चर्चा किया करते थे वहाँ पर, एक दिन ना यहाँ पर बलराम स्वयं आएंगे, एक दिन यहाँ पर बलराम स्वयं आएंगे, और पता नहीं तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे बात किया करते थे ज्योतिषी लोग बैठकर। और फिर एक दिन जन्म हुआ नित्यानंद प्रभु का, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको सबको एकदम बेभान कर दिया, लेकिन उनको किसी को लगा नहीं कि बलराम जी का अवतार है। बहुत लुभावने बालक थे वो, ऐसे कहते उनको हाथ लगाएंगे ना लगता कि मक्खन का गोला है ना, ऐसे उसको हाथ लगा रहे, इतना मुलायम उनका शरीर था, जो भी उनको मिलता था उनको खुशियाँ ही खुशियाँ का अनुभव होता था, ओनली हैप्पीनेस। फिर उन्होंने बचपन में इतनी लीलाएं की, इतने नाटक, जो लीलाओं के नाटक किए, ड्रामास किए, इतने अद्भुत नाटिकाएं प्रस्तुत की, जैसे कि मानो एक्चुअल लीलाएं हो रही हैं, ऐसे भावपूर्ण। जैसे वो एक बार लक्ष्मण बने तो बेहोश हो गए, तो बेहोश हो गए, आगे का स्क्रिप्ट लिखा नहीं था उन्होंने, आगे करना क्या है। एक को बोल के रखा था कि जब मैं बेहोश होगा ना तो फिर वो जड़ी बूटी लेके आनी है, फिर मुझे देना है उसको। तो जो बेहोश हो गए सब लोग भूल गए आगे क्या करना है, और बहुत देर तक बेहोश रहे वो। इतना नाटक एक होता है ना, नाटक सबको बोल में मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ये महसूस नहीं करता कि मैं स्वयं भीम हूँ, या मैं स्वयं कृष्ण हूँ, या मैं स्वयं बलराम हूँ, या मैं स्वयं द्वारका, क्या कहते हैं उसको, कौशल्या हूँ, या आई एम एक्टिंग। सब लोग मेकअप कर रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं उसका। वो भाव में नहीं कोई, लेकिन ये नाटिकाएँ कुछ अलग ही होती थी, भाव से करते थे ये, कि ये वो पात्र से समरस होकर करते थे। उस समय के लिए मैं भीम हूँ, उस समय के लिए मैं कृष्ण हूँ, उस समय के लिए बलराम हूँ, ऐसे अद्भुत नाटिका करते थे। सब लोग रोते थे उसको देखकर, एज इफ रामायण में ही कथा हो रही है, एक्चुअली आंखों के सामने रामायण हो रहा है, ऐसे लीला करते थे। सब बहुत आनंद दिया उन्होंने, और अचानक एक दिन चले गए। अचानक एक कोई भूसावी आ गया, कोई सन्यासी आ गया, बोला मुझे इनको चाहिए, मुझे भेजो। तो पिताजी बेहोश हो गए, फिर खड़े हो गए, फिर हाँ बोला, फिर चले गए। जैसे कुछ पलक झपकी और नित्यानंद प्रभु गायब हो गए। तब जाकर वापस ज्योतिष उन लोगों को डिस्कस किया, अरे यही तो थे, उन्होंने उनको पहचाना नहीं, चले गए वो। फिर भागे सब लोग चार दिशा में, अरे ढूंढो उनको, ढूंढो किधर रह गए, किधर गए। कुछ लोग बोल रहे हैं, अरे वो तो अभी तक कुछ पढ़े, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है अभी, कुछ उनको कुकिंग वुकिंग आता नहीं है, ऐसा कुछ चार पाँच सेवा होती सन्यासी की, उसमें से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं है। मेरा बच्चा बहुत ट्रेंड है, मैं उसको मेरे बच्चे को दूंगा और नित्यानंद प्रभु को वापस लेके आऊँगा। ऐसे बच्चे को लेके भाग रहे चार दिशा में, किधर भी चार दिशा में कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, ऐसे मानो अदृश्य हो गए वो कुछ ही क्षण में। सब लोग इतने उदास हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। जगह जगह उनको नित्यानंद प्रभु की याद आने लगी कि देखो यहाँ पर वो जमुना प्रकट हुई तो यहाँ पर वो खेलते थे, इधर उन्होंने ऐसा किया, इधर उन्होंने पेड़ की डाली पर बैठ कर देखा, स्कूल से बच्चे आ रहे थे, उनको एक बार नज़र डाल दिया उसके ऊपर तो सारे बच्चे बेहोश हो गए। एक बार ऐसे हुआ था, वो नित्यानंद प्रभु पेड़ पर बैठे थे ऐसे, वहाँ से स्कूल के बच्चों का झुंड आया, स्कूल से लौट के आ रहा था, तो केवल नित्यानंद प्रभु ने उनको देखा, एक एक करके देखा ऐसा, और जैसे देखा तो ये गिर गया, उसको देखा तो ये गिर गया, उसको देखा तो वो गिर गया। ऐसे पत्तों के होते ना, पत्ते होते ना अपने, ताश के पत्ते कैसे होते हैं, अभी खड़े करेंगे और उसको एक को टिचकी मारेंगे तो सारे कैसे गिर जाते हैं एक पे एक लाइन से, ऐसे गोल सांप की तरह, वैसे बच्चे गिर गए आनंद में विभोर होकर। इमेजिन, एक बार उन्होंने वही बच्चों को लेके कीर्तन शुरू किया, 90 दिन 24/7 कीर्तन किया, 90 दिन, बीच में कोई लंच ब्रेक टी ब्रेक ऐसा कुछ नहीं, 90 दिन लगातार कीर्तन किया, और किसी को ना प्यास लगी, ना नींद आई, ना भूख लगी। और जब बंद हुआ कीर्तन तो बोला क्यों बंद हुआ, और चलना चाहिए था। ऐसा चमत्कार किया नित्यानंद प्रभु ने। उनकी पत्नी भी ऐसी थी, वो ये नहीं, उसकी कथा बाद में आती है। तो ये सब उनको याद आने लगे कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर ऐसे हुआ था, तो उनको और दुख होने लगा उसको याद करके। तो सब लोग किसी को बताए बिना अपने अपने रास्ता छोड़कर, गांव छोड़कर चले गए, एक जगह छोड़कर चले गए, किसी ने किसको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन चले गए सब लोग। पूरा गांव सुनसान हो गया, एकाध दो ब्राह्मण वहाँ पर रह गए और काफ़ी साल रहे, इतने के बुढ़े हो गए। क्यों रहे, कि उनको उम्मीद थी कि एक दिन आएंगे, लौट के आएंगे, एक दिन लौट के आएंगे, ऐसा उनको उम्मीद थी, इसलिए रह गए वो। ऐसा अद्भुत जगह है वो जगह जो है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने जन्म क्यों लिया, क्योंकि वो एक ऐसा, क्या कहते हैं इसको, अबेंडेंट प्लेस था। हाँ,
हाँ ऐसा मतलब उसका ऐसा उधर गंगा बहती नहीं है, ऐसा बहुत सारा जो टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा कोई अवतार भक्त संत वंत कोई वहाँ पर कभी गया ही नहीं, ऐसा मानो नरक ऐसा प्लेस प्लेस था। वहाँ पर जन्म लिया उन्होंने ये दिखाने के लिए कि सबसे पतित जो लोग जगह है वहाँ पर मैं जाके उसको धाम बनाऊँगा। एक पर्सनालिटी का रहस्य है वो, उनका मूड क्या है, ये जो सबसे पतित सबसे गिरे हुए हैं सबसे गए गुजरे हैं होपलेस हैं उनको होपफुल बना देते हैं ये उनका पर्सनालिटी है, इसलिए उनका जन्म भी उन्होंने वहां लिया एक चक्र में। और वहां पर ही भीमसेन ने बकासुर का वध किया था पहले, तो ऐसे अद्भुत जगह है वो एक चक्रधाम, बड़ा दिव्य स्थान है बहुत। नित्यानंद प्रभु के पद स्पर्श से अति पावन हो गया वो, तो वहां पर जानवा देवी नित्यानंद प्रभु के अंतर्धान होने के बाद में जाती है, तो वो ब्राह्मण जो है बूढ़े बूढ़े वो उनको पूरे नित्यानंद के धाम की यात्रा कराते हैं। चलो नित्यानंद प्रभु नहीं तो पत्नी सही, तो पत्नी को लेकर उनको पूरा धाम का दर्शन कराते हैं, और जो वो हर एक जगह पर जानवा देवी भाव विभोर होकर बेहोश हो जाती है। और दुख करती है कि मैंने हड़ाई पंडित का दर्शन क्यों नहीं किया, मैंने पद्मावती जी का दर्शन क्यों नहीं किया। सासू और ससुर थे ना उनके, इतने भाग्यवान थे वो, नित्यानंद प्रभु उनके गोद में जन्म लिया, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई, एक बहू के रूप में मुझे सेवा करने का भाग्य नहीं मिला। आजकल के लोग क्या सोचते हैं, सास ससुर नहीं हो तो अच्छा है, हम लोग अकेले रहेंगे, किसी का किटकिट नहीं चाहिए। जानवा देवी सोच रही कि अरे मैं पद्मावती देवी और हरे पंडित जी का सेवा नहीं कर सकी, कितने भाग्यवान थे वो मेरे पति के माता पिता। वो भी ऐसी थी, जब वो भ्रमण किया उन्होंने, जिनको जिनको केवल देखती थी वो लोग भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते थे, उसका वर्णन दिया भक्त रत्नाकर में, अद्भुत वर्णन दिया है। जहां जहां वो गई जिस जिसको देखा, केवल देखा मात्र से, बस देखने मात्र से वो अति प्रेम भाव से विभोर होकर बेहोश होते थे लोग उनका दर्शन करने से, इतनी पवित्र थी वो, इतनी पावरफुल थी वो नेता। जहाँ जहाँ गई वो उसे आनंद के फवारे फूटते थे लोगों के मन के अंदर, बड़ी दिव्य विभूति थी वो जानवा देवी। रेवती देवी का अवतार थी वो, बलराम जी की पत्नी का अवतार थे। एनीवेज तो यही पर लिखा है ना पर कि वो जो नित्यानंद प्रभु है वो हमारे सबकी आशा है, कि कोई भी कृपा नहीं करेगा ना तो नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे। एक भक्त की आशा होती है कि सबसे करुणा वाले वो हैं, वो सबसे करुणा वाले, अति करुणा, कृष्ण से भी अधिक करुणा वाले नित्यानंद प्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु से भी अधिक करुणा वाले गौरांग नित्यानंद प्रभु हैं। उनकी कृपा प्राप्त होने पर फिर बाद में गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आर खबे निताई चांदेर करुणा होइबे, कब वो नित हमारी ऊपर करुणा करेंगे, क्योंकि वो कुछ करुणा करेंगे दर दया करेंगे तो हो सकता है संसार वासना जो है वो कम हो सकती है, नहीं तो संसार वासना कम होना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी वस्तु है कि छूटना बहुत मुश्किल है उसके लिए कृपा होनी चाहिए, कृपा होगी तो कुछ घटनाएं ऐसी जिंदगी में होगी तो शायद आप विरक्त हो सकते हो वो आसक्तियों से, अपने आप नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ भगवान के लिए भगवान की तरफ से ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होनी चाहिए जिसके वजह से आपको नेचुरल विरक्ति आएगी कि भाई बस हो गया अभी और इसमें कुछ मन लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब दुख तो होगा लेकिन वो दुख भरी घटनाएं भगवान आपके लिए आयोजित करेंगे ताकि आपकी फिर वो जो नेचुरल आसक्ति है वो नेचुरली ख़त्म हो जाएगी, आर्टिफिशियली नहीं, नेति नेति करके नहीं, ना नेति ये नहीं ये नहीं ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक जैसा सर्प अपनी चमड़ी को छोड़ देता है ना, अपने आप खाल छोड़ देता है, वैसे खरोच के नहीं, तो खरोच से खून आ जाता है फिर तकलीफ होती है बहुत, उसको विरक्ति नहीं कहते, वो भी नेचुरल होनी चाहिए, नाटक से करने से थोड़ी विरक्ति होती है किस चीज़ की। तो वो नित्यानंद प्रभु गौरांग प्रभु आपके जीवन में ऐसी घटनाएं डालेंगे तो आपको बहुत धक्का लगेगा, लेकिन बाद में अगर आप सिंसियर होंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इसका पर्पज़ यह है कि काटने का काम हो रहा है। तकलीफ होती है ना काटने समय, लेकिन फिर कटने के बाद पता चलता है कि अच्छा हुआ कट गया। वो जैसे बहुत बड़ा होता है ना बॉयल, होता है ना बॉयल, बहुत बड़ा एप्सिस होता है, एप्सिस वो ठाक 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 थ्रॉबिंग बोलते हैं उसको, इतना पीप भरा हुआ है, टेंस हो गया, लाल चमड़ी जब शाइनिंग हो गई उसके ऊपर, दर्द इतना हो रहा है अभी, डॉक्टर बोले काटना पड़ेगा उसको, नहीं 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 काटो मत, हाथ लगाने को दर्द हो रहा है, नहीं 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 नहीं, फिर ज़बरदस्ती आपको टेबल पर रखे एनेस्थीसिया दे के फिर उसको काटा जाके पूरा पीप निकाल के ख़त्म कर देंगे, फिर जो होश में आएंगे तेरी अरे अच्छा हो गया, गया निकल गया, वाओ सो नाइस, थोड़ा तकलीफ उठाया मैंने लेकिन परमानेंट का तकलीफ ख़त्म हो गया, थोड़ा तकलीफ उठाने से परमानेंट तकलीफ ख़त्म हो गई है ना। वैसे संसार की वासना होती है, जब वो होती है तो हाथ लगाने को भी तकलीफ होती है, नहीं 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 मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, इतना सेंसिटिव एरिया है ना वो, हमारे संसार वासना जो है बहुत सेंसिटिव एरिया होती है वो, यू डोंट वांट टच इट। आप बोलेंगे पत्नी के ऊपर मन छोड़ दो, मतलब ज़्यादा आसक्ति मत रखो, तो ये विषय बोलना भी बहुत मुश्किल है, इसका विषय निकालना भी बहुत मुश्किल है। बालक की पर बालक पर जो आसना है वो जो आसक्ति है वो छोड़ दो, ज़्यादा अटैच मत रहो, तो कैसे दुष्ट लोग हो आप लेकिन ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं कि वही बालक जब बड़े होते हैं तो आपको दुर्लक्ष करते हैं, अरे इसको मैंने इतना प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, यही था क्या वो, कितना कष्ट किया इसके लिए, कितनी रातें हराम की इसके लिए, कितने पैसे खर्च किए, कितना जिंदगी की खुशियां त्याग कर दिया इसके लिए, इसको संभालने के लिए, और आज वो हमारे ओर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे अगर नहीं होगा तो हमारी जो आसक्ति बनी हुई है कैसे नष्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति होता है वो जो ज्ञान से समझ जाता है कि भाई ये सब अल्टीमेटली छोड़ना है मुझे, और एक व्यक्ति इतना चिपका हुआ है कि उसको फिर ऐसे बुरा व्यवहार के बिना वो छोड़ नहीं सकता है उसको, ऐसे बुरे अनुभव आने के बिना छोड़ नहीं सकता है उसको। लेकिन दोनों तरफ से, बुरे अनुभव से या ज्ञान से, हमको तो छोड़ना तो है एक दिन उसको, जब तक नहीं छोड़ेंगे तो भगवान को कैसे प्यार करेंगे। भगवान भी ऐसे है ना, वो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ चलो मुझ पर भी प्रेम करो उन पर भी करो कोई बात चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान बोलते हैं एक बस एक हो हम दुजो नास्ती वो श्रूड प्रेमी है वो, बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको श्रूड, व्हाट इज हिंदू हिंदी वर्ड फॉर दैट, चतुर तो बहुत स्वीट शब्द है एकदम बहुत हाँ क्रूर नहीं श्रूड का आई डोंट नो, आई हैव नॉट येट गॉट वर्ड ट्रांसलेशन फॉर दैट, बट एक्सक्लूसिव चलते हो प्रेम अटेंशन एकदम वन टू वन, नो मोर शेयरिंग बिजनेस हियर। तो वो भी चाहते हैं कि आप भी, वो भी चाहते हैं कि मैं भी आप पर ऐसा ही प्रेम करूं, आप भी मुझ पर ऐसा ही प्रेम करो, तो फिर उसके लिए वो कभी भी कटाई भी करते ना थोड़ी थोड़ी, ऐसा है वो। तो इसलिए हमको नित्यानंद प्रभु, वो हमारी जो माता जी थी ना लादिनी माता जी, जिनका लाइब्रेरी में देहांत हो गया, वो कहती थी कि आप असहाय होंगे जीवन में तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करो, वो सबसे दयालु हैं, वो बोरे करुणामयी है, वो आपका दोष वोष देखते नहीं हैं, केवल कृपा करते रहते हैं। ये उन्होंने कहा था कि नित्यानंद प्रभु जो हैं सबसे दयालु हैं, इसलिए हम उनके करुणा चरणों की याद करके याचना करते हैं कि हम आपके सेवक बनना चाहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।